ओम शांति। तो स्वयं भगवान हम सबको अनेक प्रकार की ऐसी खूबियों से श्रृंगारित कर देते हैं, सजा देते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बातों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। कई प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। जब जब हम समस्याओं को पकड़ के बैठ जाते हैं तो चिंतन भी समस्याओं का चलना आरंभ हो जाता है, फिर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। समस्याओं के बारे में सोचने की बजाय समाधान के बारे में अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो सोचने का काम भी स्वयं भगवान ही करेगा और समय पर एक्यूरेट उसकी टचिंग स्वतः होगी, जो हमें बहुत हल्का लगेगा, महसूस होगा, रियलाइजेशन होगा कि सचमुच भगवान की टचिंग है, कि हम सब आत्माओं के अंदर उतना तो सामर्थ्य नहीं था जो इस तरह की समस्याओं का समाधान के बारे में सोच सके। तो हम सब आत्माओं की बुद्धि को भगवान ने बहुत विशाल बना दिया है, इतनी विशाल बुद्धि है जो सारे संसार का संचालन करने वाली आत्माएं हैं हम। आज संसार में छोटा मोटा गांव होता है या पॉलिटिशियन होते हैं तो उनको समाज को थोड़ा राह दिखाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। तो भगवान भी हमारे यहाँ चुनाव करता है। संसार में इतनी ढेर सारी आत्माएं हैं, उनमें से थोड़ी सी आत्माओं का सिलेक्शन हुआ है, किसी मनुष्य के द्वारा चयनित आत्मा नहीं है। स्वयं भगवान ने हम सबको सिलेक्ट किया है, उसकी सिलेक्शन में कोई भी डिफेक्ट नहीं हो सकता, एकदम परफेक्ट है। हम सब आत्माओं में उसने इतनी सारी खूबियां देखी, कई आत्माएं हैं जो संसार को बेहतर तरीके से संचालित कर सकती हैं, संसार को कुछ दे सकती है, संसार को प्योरिटी की वाइब्रेशन दे सकती है। आज शाम के मेडिटेशन में था ना, केसेस का साकाश देने के लिए कहा था, पवित्रता का साकाश, पवित्रता की लाइट कहां से देनी थी? लाइट की पहाड़ी। ये कहां होती है लाइट की पहाड़ी? सूक्ष्म वतन में। और जहां बैठे हैं वही लाइट की। हाँ जी, कहीं भी बना लो, सब अपने हाथ में है। तो इतने सुंदर सेवा के लिए, इतनी बड़ी सेवा के लिए, इतनी बढ़िया सेवा के लिए भगवान की नजरें हमारे पर टिकी हैं। उसको नाज है कि यही मेरे बच्चे संसार की सेवा कर सकते हैं, संसार की नैया को पार लगा सकते हैं, संसार को नई दिशा दिखा सकते हैं। तो हमें स्वयं के ऊपर भी कितना फक्र होना चाहिए। इन स्मृतियों को निरंतर चिंतन में रखना, स्मृति में रखना, समर्थ स्मृतियों को स्मृति में रखना, यही वास्तव में सोमान में स्थित होना है। बाबा को भी नाज है कि ये कौन सी आत्माएं हैं, कौन सी आत्माएं हैं आज की मुरली से बताओ, कौन किसको देख रहा है? विशेष बाप, विश्वेश्वर बाप। कौन सी आत्मा को देख रहे हैं? जो आदि रचना है, समीप आत्माएं हैं, समीप रत्न हैं, ऐसी आत्माओं को देख बाबा भी खुश होते हैं, मिलन मना रहे हैं उनसे। बाप भी बच्चों को देख के खुश होता है, तो बच्चे भी बाप को देख खुश होते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही स्नेह से, सहयोग से, बड़ी हिम्मत से बाप के कार्य में मददगार बने हो, तो ऐसे बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। तो स्वयं भगवान हमारे पर हर्षित हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन होता क्या है, कोई यहां हमको देखकर दुखी होता है तो सारा गड़बड़ हो जाता है। हमारा दृष्टिकोण छोटा सा रहता है, संकुचित। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान भी हमको सवेरे देख के खुश हुआ था, उसने में हमारे में हजारों विशेषताएं देखी, विशेषताओं के वरदान बरसाए हमारे ऊपर, विशेषताओं का झंडा लहराया हमारी विशेषताओं का। लेकिन दिन में दूसरे दूसरे झंडे लहराते रहते हैं, उल्टी हवा चलती रहती है, कई प्रकार के तूफान आते रहते हैं, तो हमारी दिशा बदल जाती है, हमारा चिंतन की धारा बदल जाती है। फिर कहीं नशा थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, फिर अगले दिन फिर थोड़ा बाबा इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, जब तक क्लास में है। जैसे क्लास से बाहर निकलते हैं फिर चिंतन भूलना शुरू हो जाता है। इसलिए निरंतर अपने मन को बिजी रखने की आदत डालना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमने मन को काम नहीं दिया तो मन का काम तो है ही सोचना, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। तो मन को अपना मित्र बनाना है, दोस्त बनाना है। मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे शक्तिशाली संकल्प, संकल्पों का खजाना भरकर रखना है, जो निरंतर उनकी गंगा बहती रहे, रुके ना। जैसे पानी को अगर रोक दें, फुल फोर्स से पानी आएगा तो तोड़ देगा वो सारा। इसी तरह से अगर हमारे मन के अंदर समर्थ संकल्पों का भरपूर खजाना है तो उनकी गंगा निरंतर बहती रहेगी। कोई भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, वो अपने आप किनारे हो जाएंगी। तो बाबा भी हम बच्चों को देखकर कितना खुश होते हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं हैं जो ब्राह्मण जीवन में अवतरित हुई हैं। बाबा भी उधर से अवतरित हुए और हम भी अवतरित हुए। ब्राह्मण आत्माएं थी, ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए, अवतरित हो गए। फिर दोनों का क्या हुआ? बर्थडे हो गया। बाबा का भी बर्थडे, बच्चों का भी। एक दो का बर्थडे मनाते हैं। और बर्थडे में क्या क्या करते हैं? अभी थोड़ा बर्थडे का प्रचलन बढ़ गया है ना, बाबा के टाइम में इतना नहीं होता होगा, क्योंकि मुरलियों में थोड़ा बर्थडे की बात इतनी आती नहीं। अगर आती भी है तो बाबा उसको पूरा कर देते हैं। तो वास्तव में अलौकिक बर्थडे तो हमको डेली मनाना चाहिए, है ना। बर्थडे में क्या क्या करते हैं? केक, मिठाई होती है, तो यहां भी ज्ञान रत्नों की मिठाई चाहिए, ज्ञान की मिठाई, दिल खुश की मिठाई, दिल खुश टोली, वो हमारे पास डेली मौजूद होनी चाहिए। उस दिल खुश टोली को दिलाराम के तख्त पर बैठकर खाने का, तो कहेंगे सच्चा बर्थडे मनाना। तो बाबा भी बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बच्चे भी बाप का बर्थडे मनाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते रहते हैं। और साथ साथ में कौन खुश होता है, आज की मुरली में था ना, और कौन खुश होता है, बाप दादा के साथ साथ कौन कौन थे जिन्होंने मुबारक दी सबको। हाँ, बाप दादा के साथ साथ जगदम्बा और आप सर्व किसने एडवांस पार्टी की आत्माएं, वो भी हमको देख के खुश होती हैं, क्योंकि उनके द्वारा तो ये रोपा गया बीज है जिसके हम सभी फल के रूप में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो सारे बैठे हुए एडवांस पार्टी वाले देख रहे हैं, देखो उधर से पीछे वो बेंची देख रहे हैं उधर से, है ना। और जिन दादियों की फोटो इसमें नहीं है, यहाँ बाहर लगी हुई है, तो सब एडवांस पार्टियों की रोज दृष्टि लेनी चाहिए, तो वो भी देख के हम सबको देख के खुश होते हैं, मुबारक देते हैं। और बाबा को भी खुशी में खुशी होती है, क्यों खुशी में खुशी क्यों होती है, एक है खुश होना, दूसरा है खुशी में खुश होना, उसका क्या अर्थ है। खुशी तो होती है नॉर्मल नेचुरल सबको होती है, कोई भी चीज मिलती है, लेकिन खुशी में खुशी उसका अर्थ क्या है कि एक है हमारा दोस्त है कोई, हम डेली मिलते रहते हैं, आपस में गप्पे मारते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन एक वो पुराना दोस्त आता है कोई जिसके बारे में हम केवल सोचते रहते थे और वो मिलता भी नहीं था, और अचानक सामने आ जाते तो खुशी में खुशी होती है। तो बाबा को भी ऐसे मिले, ऐसे बच्चे मिले, कल्प के बाद मिले के परमधाम में जो आत्मा ने, क्योंकि जो बिछड़ गया था दोस्त उसके साथ हम लंबे समय के साथ उसने हमने गुजारा अगर हो तो मिलने के बाद खुशी होगी ना। तो हम ऐसे आत्माएं भी बाबा के साथ तो लंबे समय तक हम परमधाम में नहीं रहे, लेकिन नजदीक में रहे, क्योंकि बाप समान बनने का हम सबने पुरुषार्थ किया है। आत्माएं तो दूसरी भी परमधाम में बहुत सारी हैं, लेकिन हम वो आत्माएं हैं जिन्होंने बाप समान बनने का पुरुषार्थ किया और बाप के समीप रही हैं। वो अब कोई पड़ोसी घर के छोड़ के चला जाए तो जगह तो खाली हो जाएगी ना, फिर दूसरे तीसरा घर दूर दूर हो जाएगा। तो ऐसे हम सब आत्माएं भी बाबा के वहां समीप रहती है, इसलिए बाबा ने स्टार्टिंग में क्या कहा कि समीप रत्न बच्चे हैं, विश्वेश्वर बाप समीप रत्नों से मिलने आए हैं। तो हम परम धाम में बाबा के पास में बिल्कुल समीप आत्माएं हैं, बिल्कुल नजदीक हैं, उसके समान में है, इसलिए बाबा को खुशी में खुशी होती है। उसको नाज है हम बच्चों पर कि आदि रचना है, विशेष आत्माएं हैं, तो ये हमको स्मृति में रहता है। तो स्मृति स्वरूप बनने के लिए इन बातों का दिन जब भी मौका मिले छोड़ना नहीं, चूकना नहीं है, कुछ ना कुछ तो चिंतन करते रहना। हमने देखा बहुत सारे भाई बहने मुरली रखी होती है, पढ़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चलता रहता है, बाहर से देखने से पता थोड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करते रहते हैं और उनके चलन से पता पड़ता है कि विशेष देखने में भले कोई साधारण लगती है। यहां भी सेवा में बहुत सारे सेवाधारी भाई बहने आते हैं तो बहुत टाइम अपना सफल करते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से घरों से निकल के आए हैं, कितनी मुश्किल से छुट्टी ली होगी, सारे काम समेटे होंगे, सबको सेटिस्फाइड किया, किसी से कुछ सुना भी होगा, थोड़ा आराम से खुशी खुशी सुन भी लिया, या आने के लिए थोड़ा खर्चा भी इकट्ठा किया, कितनी मेहनत की। तो यहां आके वो आत्मा देखा हमने पूरा सफल करते हैं, कई तो आत्मा दोपहर को सोती भी नहीं है, सेवादारी आत्मा बैठे रहते हैं बाबा के कमरे में, बैठेंगे कुटिया में बैठेंगे शांति स्तंभ पर, यहाँ पर 10-10, 15-15 मिनट, तो कितनी कमाई कर रहे हैं। तो बाबा की नजरों तो हर बच्चे के ऊपर पूरी नजर रहती है, कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो हम सब इस रूहानी बगीचे की कहो ब्राह्मण परिवार की विशेष आत्माएं हैं, है ना। और यहाँ से कोई कोई आत्मा तो मोबाइल से लाइव भी दर्शन करा देते हैं, सबके घर में दर्शन कराते रहते हैं, आप भी देखो। तो बाबा को खुशी में खुशी होती है। और कौन से त्योहार है ये, 16 फरवरी 1988 शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के ऊपर बाबा ने क्या कहा? वैसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इस मुरली में क्या बोला शिवरात्रि के बारे में? हाँ जी, बाबा ने कहा भक्तात्माओं को भी महत्व है, तुम बच्चों को महत्व है, भक्तात्माएं भी शिवरात्रि तो मनाती हैं, शिव जयंती मनाते हैं, साकार रूप में नहीं, उनको भी बिंदु रूप का महत्व जानते हैं, वो बिंदु को याद करते हैं, और तुम आत्माएं भी बिंदु रूप को याद करती हो। क्यों? क्योंकि बिंदु सूक्ष्म है और शक्तिशाली है, इसलिए क्या कहा जाता है उसको? शिव बाबा। और बिंदु सूक्ष्म है और शक्तिशाली है, इसको उसको क्या कहा जाता है? गुणों का सिंधु कहा जाता है, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का सिंधु कहा जाता है। तो हम सब उसके बच्चे हैं, तो हम सब भी कौन ठहरे? मास्टर सिंधु। तो हम भी मास्टर सिंधु हैं, जैसे सागर की लहरें चलती रहती हैं, ऐसे भी हम आत्माओं के मन के अंदर संकल्पों की, शक्तिशाली संकल्पों की लहरें चलती रहनी चाहिए, उन लहरों से निरंतर वाइब्रेशन, पवित्रता, सुख के, शांति के वाइब्रेशन निरंतर प्रवाहित होते रहेंगे। भगवान ने कहा तुम बच्चे मास्टर दाता हो, आज का वरदान। मास्टर दाता अर्थात क्या क्या था? हाँ, जो अपनी रूहानी भावना से हर एक रूह के प्रति शुभ आश रखते हैं, शुभ संकल्प रखते हैं कि ये भी बाप समान बने, ये भी वर्षे के अधिकारी बने, जो भी आत्माएं दुखी हैं, अशांत है, कंगाल हैं, वो क्या हो जाएं? सुखी हो जाएं, शांत हो जाए और माला माल बन जाएं। तो हम सब उसके बच्चे मास्टर दाता हैं। तो जो बाबा के संस्कार हैं, बाबा के कर्तव्य हैं, वो हम सबके हैं। तो निरंतर ये स्मृतियां हमको समर्थ बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं, तो महसूस होगा कि हम भी सचमुच मास्टर गुणों के सिंधु हैं। नहीं तो केवल मन तक ही रहेगा, नहीं तो वो लाइन केवल सीमित रहेगी, हमारे अंदर समावेश नहीं करेगी वो, इसलिए ऊपर उस पर चिंतन करना है। मुरली एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है, डेली नई नई मुरली आती है, अगर हमने थोड़ा सा भी उसको पकड़ा नहीं है तो खिसक जाती है हमारे हाथ से, और अगले दिन में दूसरी आएगी, फिर पिछली को सोचेंगे इसको क्या पढ़ें, अभी तो नई आ गई, लेकिन नई में हमने ध्यान नहीं दिया, वो भी ऐसे निकल जाएगी, फिर धीरे धीरे वही वही परिपाटी बन जाती है, फिर मन को क्या लगता है ठीक है रोज ये एक जैसा होता है, मन मना भव, घर को याद करो, बरसे को याद करो, बाप को याद करो, सुदर्शन चक्कर चलाओ, माया आती तो उसको छोड़ दो। तो मुरली के ऊपर थोड़ा ठहरना है, चिंतन करना है, जब तक वो हमारे में समावेश नहीं करे। पिछले मुरली में क्या कहा था बाबा ने? संडे की मुरली में कौन सी मुरली थी पिछली? हाँ जी, बाबा की मुरली थी, कौन सी? बाबा की शुभ आशाएं थी, कौन सी शुभ आशाएं? दो शुभ आशाएं थी। हाँ, और हाँ जी, साथी साक्षी, और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति आश, शुभ आशा, शुभ भावना, शुभ कामना, और उसके लिए बताया था बैलेंस, कौन सी चीज का? याद और सेवा, और याद और सेवा के लिए एक और बैलेंस बताया था, वो था स्नेह का बैलेंस। जैसे बाप से बच्चों का स्नेह तो बहुत है, उसमें तो पास है, स्नेह की माला लंबी है लेकिन विजय की माला कम है। तो जैसे बाप के साथ स्नेह, ऐसे ब्राह्मण परिवार के साथ भी हमारा स्नेह हो, ये शुभ आशा है। तो आज की मुरली जो तो मेन थी उत्सव के ऊपर थी, तो हमारा जो जीवन है ना वो उत्सव हो जाए, हर प्रतिदिन, हर दिन, हर पल उत्सव हम मनाते रहते हैं। तो संसार में उत्सव मनाने के लिए क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन सदा खुशियों से भरपूर है, उसके लिए क्या करना चाहिए? संसार में अगर जीवन को हरा भरा रखना हो तो क्या करते हैं? हाँ जी, नाराज नहीं होंगे, और बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो सारी बातें आज की मुरली में भी हैं, प्राप्तियों का। एक तो है उत्सव है, जब हमारे पास कुछ खजाना होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, प्राप्तियों से संपन्न, तो हम उत्सव हमेशा मनाते रहेंगे। उत्सव मनाने के लिए पैसा भी चाहिए ना, तो हम भी ज्ञान धन से अगर भरपूर रहेंगे तो उत्सव मनाते रहेंगे। और उत्सव वो व्यक्ति बनाता है जो दूसरे की बातों के बातों में हस्तक्षेप नहीं करता है, अगर दूसरों की बातों में हस्तक्षेप करेंगे तो भी उत्सव नहीं मना पाएंगे। और कौन मनाता है? जो बीमारियों से मुक्त होता है वही उत्सव मना पाएगा, वही, और जिसको अनेक प्रकार के जो है व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो या किसी का कोई कर्जा ना हो वो उत्सव मना सकता है। तो हमारे अंदर भी अनेक प्रकार की व्यर्थ संकल्पों की बीमारियां होती हैं, अगर हम उनसे मुक्त नहीं है तो भी हमारे जीवन में खुशी नहीं रहेगी, वो सब नहीं रहेगा। और हल्के होते हैं, वो लाइट रहते हैं, और वो दान करते रहते हैं, हम भी दान करते रहे निरंतर, और एक्सरसाइज करते हैं, हम भी डेली ड्रिल करते रहे, तो कितनी सारी बातें हैं। तो हमारा जीवन जो है ना, हर घड़ी उत्सव वाला जीवन है। तो ब्राह्मण जीवन, बाबा ने कहा ये स्लोगन हमेशा याद रखो, उत्सव का जीवन है ये। अगर हम भगवान के साथ रहकर उत्सव का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो सारे कल्प में कहां करेंगे। हमारी मूर्तियों को देखकर दुनिया वाले उत्सव मनाते हैं और हम ही उत्सव नहीं मनाए तो क्या हाल होगा, है ना। जो त्योहार होते हैं किसको देख के मनाते हैं, देवी देवताओं को देख के मनाते हैं। तो हम भी सभी तो वो चैतन्य में है ना, तो हमें इस समय संगम युग पर हमारा कोई भी ऐसा पल ना हो जो बिना खुशी के बीते। समस्या आएंगी, बाबा ने कहा ना माया तो आएगी, माया को प्यार है आपसे, आपको माया से प्यार नहीं है, हम थोड़ा नहीं करते हैं, वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि पहले तो था ना प्यार, अब हमने छोड़ दिया इसलिए वो आती है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, उसको केवल साक्षियों के देखो, पकड़ो नहीं उसको, अगर पकड़ेंगे तो मरेंगे, है ना। जैसे एक सांप था, वो जो तरखान होता कारपेंटर, उसके थैले में घुस गया वो, और थैले के अंदर एक आरी पड़ी हुई थी जिसके दांत दांत होते ना लकड़ी काटने वाली, तो जैसे वो घुसा उसको थोड़ा लग गया, उसका खून निकल आया, तो उसका गुस्सा आ गया सांप को, तो उसने आरी को दांत से पकड़ लिया। अब दांत से पकड़ा तो और ही उसको खून निकल आया और गुस्सा चढ़ा, उसने सोचा मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, तो वो आरी को लिपट गया सांप, तो क्या होगा, अभी खुद मर गया क्योंकि उसने पकड़ लिया, समस्या को पकड़ लिया। तो हम भी कहीं कहीं ऐसे ही करते हैं कि बातें आती हैं उनको पकड़ने की बात जरूरत नहीं है, माया तो आएगी। बाबा ने कहा ना कोई काम के रूप में आएगा, कोई क्रोध के रूप में आएगा, लेकिन पकड़ना नहीं है, दिखाई तो देगा लेकिन उसको टच नहीं करना है। जैसे जानवर आते हैं, अभी भालू आते हैं या कोई भी चीज आती है, सांप आता है, तो हम पकड़ेंगे उसको जाके, केवल देखते हैं, मजा लेते हैं ना उसका, है ना, पकड़ेंगे तो नहीं ना। ऐसे बातों को भी नहीं पकड़ना है, बातें तो आएंगी, विकार भी आएंगे, मन में संकल्प आएंगे, लेकिन उसको चिंतन नहीं करना बार बार। बाबा ने कहा अपनी कमियों को बाप को दे दो, लास्ट पैराग्राफ मुरली में था ना, विदेशियों से मुलाकात, जो भी कमी कमजोरियां हैं बाप के आगे अर्पण कर दो। जो एक बार चीज दे दी थी वापस क्यों ली, लेकिन वो वापस आने की संभावना होती है अगर हम उनका चिंतन बार बार करते हैं, तो संकल्प आएंगे लेकिन उन पर ठहर नहीं जाना, छोड़ देना, नया संकल्प रचना है। एक बार संकल्प आता है तो पहले से हमारे पास, अगर हमें पता है कि बार संकल्प आने की मार्जिन है तो पहले से हमारे पास 20 समर संकल्प बुद्धि में जमा होने चाहिए, पहले से हमारे पास उस समय के लिए शस्त्र तैयार रहना चाहिए कि कैसे उनसे पार पाए। तो बातों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, माया से घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा परिस्थितियां आएंगी, उनसे पाठ पढ़ो, शिक्षा लो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा थोड़ा नहीं कि हम सीधा बाबा हमारे पर ताज रख देगा, अनेक जन्म हमने अनेक प्रकार के कर्मों के बीज बोए हैं तो फल के रूप में हमारे सामने आएंगे ना, दूसरा थोड़ा नहीं उसको काटेगा, तो वो आएंगे, माया के रूप में आएंगे, किसी भी रूप में आएंगे, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोह के रूप में, मोह के रूप में भी आएंगे, लेकिन उनको पकड़ना नहीं है, चिंतन नहीं करना है, छोड़ देना उसको, है ना। सीन सीनियां तो बदलेंगे, बाबा ने कहा ना सीन बदलते रहेंगे, है ना, आएगा जाएगा और बदलेगा, हमको ठहर नहीं जाना है। अगर मान लो हम घूमने जा रहे हैं तो एक ही जगह ठहर थोड़ा नहीं जाएंगे, तो बाकी यात्रा कैसे होगी, चलते रहना है। और चलते चलते कहीं बदबू वाले सीन भी आएंगे, कहीं खुशबू वाले, कहीं कूड़े का ढेर भी होगा तो कहीं फूलों की खुशबू भी होगी, बदलता रहेगा ना सीन। तो जिंदगी भी हमारी ऐसे एक यात्रा है, इसको उत्सव की तरह लेना है, साइड सीन की तरह है, कई प्रकार के सीन आएंगे, उन सीन को हम कैसे देखना है, साक्षियों के देखना है, खेल की तरह देखना है, खेल है, गेंद तो सामने से आएगी, ऐसा तो नहीं है कि हम बैटमैन वहां ही खड़ा रहेगा, वो तो आउट हो जाएगा, फिर उसको मार देगा सीमा रेखा से बाहर। तो हम आत्माएं भी ऐसे, अगर कोई माया भी बात आती है, कुछ भी समस्या आती है, तो हमें उनको पकड़ना नहीं है, उनको बाहर फेंक देना, छोड़ देना उनको। किसी व्यक्ति के साथ जिसको हम नहीं चाहते हैं, उस पर अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो वो हमारे पास आएगा नहीं, अगर थोड़ा भी ध्यान दे दिया तो हमारे पास बैठ जाएगा। माया भी ऐसा ही है, थोड़ा सा भी अगर हम उसको देख लिया, चिंतन कर दिया, तो हमारे पास बैठ जाती है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है, तो उसको डोंट केयर कर देना। मुरली के जो अनेक प्रकार के पॉइंट है ये हमारे लिए जैसे एक शस्त्र की तरह काम करते हैं। एक बुद्धि का भोजन है, खुराक है, ताकत है, माजून है, चोब चीनी है, कितनी प्रकार की बाबा बातें करते हैं मुरली के लिए, कितनी शक्तिशाली शस्त्र है। तो हम बच्चे भी खुशी में हमेशा खुश रहें, डबल खुश रहें। और दूसरी बात क्या बताया बाबा ने, झंडा कौन सा लहराना है, बाबा ने हमारे ऊपर कौन सा झंडा लहराया, वरदानों का झंडा। बाबा ने कहा तुम बच्चे तो झंडा लहराते हो सेवार्थ, शिव बाबा का झंडा लहराते हो, उससे क्या होता है, कौन सी वर्षा, फूलों की वर्षा होती है, लेकिन भगवान ने हमारे ऊपर कौन सी वर्षा की, वरदानों की। कौन कौन से वरदान थे, अमर अविनाशी बाबा, अमर बाबा और अचल अडोल बाबा, तो ये तो तीन वरदान थे। ऐसे वरदानों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि बाबा ने तो हम हजारों वरदान दिए हुए हैं, तो फीलिंग में आना, उसको अनुभव करना है जब भी हम अमृत वेले या शाम के टाइम योग में बैठते हैं, कि भगवान स्वयं वरदानों की बरसात मेरे पर कर रहा है, वरदानों की वर्षा हो रही है, उसकी लिस्ट बना देनी है, 51 वरदान, 21 वरदान, 101 वरदान। वो वरदानों का चिंतन करते करते अमृत वेला बीत जाता है, और उनके अंदर शक्ति है, क्योंकि वो शब्द किसी मनुष्य के नहीं है, भगवान के शब्द हैं वो, उनमें ताकत है, प्योरिटी है, पवित्रता है, शक्ति है, बल है उनमें, है ना, अनेक प्रकार के उनमें करंट है। तो जैसे हम स्मृति मिलाते हैं तो आत्मा जैसे अंदर से करंट लगता है, उसको आंखें खुल जाएंगी, नींद नहीं आएगी फिर, और अमृत वेला फुल चार्जिंग हो जाएंगे। तो रोज ये अनुभव करना है, जैसे वरदानों की बरसात हो रही है, स्नेह की बरसात हो रही है, उसके खुद कमेंट्री बनानी, खुद की बनानी है, बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। दूसरों की कमेंट्री सुन सकते हैं, लेकिन उस सुनने के बाद खुद की चीज तैयार करनी है। तो वो रोज भगवान हमारे ऊपर भगवान वरदानों की वर्षा करते हैं, और अनेक आत्माओं की विशेषताओं का झंडा लहराते हैं। तो भगवान सबकी विशेषताएं देखते हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए, दूसरों के अवगुण देखने चाहिए, सबकी विशेषताएं देखनी चाहिए, है ना। पिछले क्लास में बोला था ना, सबकी विशेषताएं देखनी है, वो चश्मा हमारी आंखों पर हमेशा पड़ा रहना चाहिए, हर एक की विशेषताएं देखनी है। भगवान हमारे अवगुणों को थोड़ा नहीं देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, और वो सारे अवगुण धीरे धीरे हमारे अंदर समा जाते हैं, फिर हमारी प्रगति नहीं होती है, वहीं के वहीं ठहरा हुआ अनुभव करते हैं। तो हमें सबकी विशेषताएं देखनी है, कोई भी है, चाहे कोई ज्ञान में, चाहे कोई अज्ञान, बिना ज्ञान में, ज्ञान में नहीं है, सबकी विशेषताएं देखनी है। बाहर वालों को भी अगर हम थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं तो उनको भी लगता है हाँ इनका मार्ग बहुत अच्छा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अगर घूमने जाते हो तो कोई बच्चे नमस्ते करते तो जवाब कैसे देना चाहिए, ओम शांति से, नमस्ते से देना चाहिए। कोई राम राम करता तो राम राम से, तो उसी अनुकूल सामने वाले को लगता है ये हमारी बात को तवज्जो दे रहे हैं, हमारी बात को सम्मान दे रहे हैं। तो हमें हर एक की विशेषताएं देखनी है, क्योंकि सारे दिन में ठीक है यहाँ तो सेवा है, जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो अधिकतर आत्माएं तो हमारे संबंध संपर्क में वही आती हैं जो ज्ञान में नहीं है, और वो प्यासी आत्माएं हैं, वो दुखी हैं, अशांत हैं, है ना। उन दुखी अशांत आत्माओं को थोड़ी सी तो अनुभूति हो, तो उन्हीं के अनुकूल उसी तरह उपचार करेंगे तो उनको शफा मिलेगा। अगर जबरदस्ती हम करेंगे तो बोलेंगे ठीक है, क्योंकि बदलाव तो दिखे, क्योंकि उसमें हमारी जिद दिखती है, ज्ञान का अहंकार दिखता है। अगर हम जबरदस्ती अपना ज्ञान थोपते हैं किसी के ऊपर, ज्ञान का अहंकार दिखता है। तो समय और परिस्थितियां, किसी की नब्ज को देकर ज्ञान देना, इसको कहते हैं समझदारी। जरूरी है कोई सामने वाला ज्ञान में चल पड़े, लेकिन कम से कम उसको कुछ तो अनुभूति हो जाए, उसके जीवन में थोड़ी खुशी भर जाए, उसको भी लगे कहा हाँ जीवन इनका अच्छा है, ऐसा जीवन जीना चाहिए, धीरे धीरे बदल जाएंगे वो भी। तो बाबा ने कहा विशेषताओं का झंडा लहराते रहो, जैसे बाबा ने लहराया हम भी सारे दिन में विशेषताओं का झंडा लहराते रहें। और क्या कहा बाबा ने, अन्न के बारे में बात की, कि महत्वपूर्ण सब्जेक्ट तो वही है अन्न। हाँ, बाबा की याद में खाएंगे तो दवाई बन जाएगी और दुख दूर हो जाएंगे। तो अगर हमारे जीवन में दुख है तो इसका अर्थ है कि हम याद में नहीं खाते हैं, है ना। बाबा ने कहा दुख भंजन भोजन है, भगवान के मुख से निकले महावाक्य, कोई ऐसे थोड़े नहीं कोई भगवान ऐसे बोल दिया। तो अगर हमारे जीवन में दुख है तो कहीं ना कहीं उस भोजन में बाप की याद समाई हुई नहीं है, दूसरी दूसरी बातों की याद हम मिक्स कर देते हैं उसमें। और इस ये भी एक कड़ी साधना है, भोजन पर याद में रहना थोड़ा टेढ़ी खीर लगती है सबको, लेकिन वास्तव में सहज है अगर अटेंशन देंगे तो। है ना। कोई कोई बातें होती हैं करने की होती हैं, कोई अचानक किसी को फोन आ गया, दूसरे अर्जेंट फोन आ गया तो उठाना पड़ेगा। अब मान लो किसी का कोई दूर है, रिश्तेदार है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो उठाना पड़ेगा ना। लेकिन जितना समय हम भोजन करें गिट्टी मुख में डाल रहे हैं, तो कोशिश करके प्रयास क्या हमको पूरा पुरुषार्थ करना है कि हम बाबा की याद में उस भोजन को खाएं, क्योंकि वो हमारे कर्मेंद्रियों में समाता जा रहा है। हमें सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, जो इन आंखों से हमको दिखाई दे रहा है कि ये कर्मेंद्रियां पूरी तरह शीतल हो जाए। बाबा ने कहा ये आंखें बहुत धोखेबाज है, तो हम क्या चाहते हैं अंदर से, आत्मा क्या चाहती है कि आंखें धोखा ना दे, बिल्कुल मन धोखा ना दे, ये हाथ धोखा ना दे। तो उस कहां से होगा, वो जो अन्न जो है वो सीधा हमारे कर्मेंद्रियों में जा रहा है, उसका पूरा पूरा इफेक्ट हो रहा है तुरंत। कोई भी चीनी खाते जिसको शुगर कम हो जाती है, तो शुगर खिलाने से कैसे तुरंत काम करती है वो, तो अन्न भी ऐसे हमारे कर्मेंद्रियों पर तुरंत काम करता है वो। इसलिए बाबा ने उसका महत्व बताया कि तुम्हारे जैसा शुद्ध अन्न किसी को नसीब नहीं होता है, दुख भंजन भोजन है, अनेक प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। अगर वो भोजन है ऐसे वैसे धन से आया है तो क्या होगा, पद्म गुणा क्या होगा, बताया ना मुरली में क्या बताया, चिंता। और चिंता किसके समान है, चिता के समान है, सारा दिन जल जल कर मरते रहेंगे हम। तो भोजन के ऊपर हमको बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है कि भोजन के जितना भी हम इसमें भोजन करते हैं, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से बाबा को स्वीकार करा के, कितना अहोभाव से वो भोजन कहाँ कहाँ से आ रहा है, गुजर के आ रहा है उस किसान के लिए जिसने फसल को पैदा निकाला है, बीज पैदा किया है, खेतों में हल चलाया, कितनी मेहनत की होगी। इसलिए दादियां एक एक दाने का कितना महत्व बताती हैं, है ना। तो उसी अनुसार हम भी उसी उसी वंशावली के तो है ना, कोई अलग घराने के तो नहीं है, तो हमें भी भोजन का कितना महत्व रखना चाहिए। वो भोजन दुख भंजन भोजन बन जाए, वो भोजन एक योग का टाइम बन जाए। तो और ये धीरे धीरे होता है, प्रैक्टिस बड़ी दृढ़ता चाहिए इसमें। और इस काम को जब हम करने लग पड़ेंगे तो एक अपने आप ही अंदर खुशी बढ़ती जाएगी, है ना। तो भोजन के बारे में कहा, और क्या कहा बाबा ने आज, और जीवन में उत्सव कैसे होगा, मौन रहने से, सभी मौन हो गए एकदम, तो कैसे होगा उत्सव जीवन में। हाँ, उमंग उत्साह कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा उमंग सा। कैसे बढ़ेगा उमंग सा, किसी को सहयोग देने से, फिर साक्षियों के खेल को साक्षियों के देखने से। बताया ना कौन सा खेल बताया बाबा ने आज, मिक्की माउस का है। तो उसको हम कैसे देख के खुश होते हैं, उमंग सा आता है, प्रभावित होते हैं उसको। मिक्की माउस देखा किसी ने, माताओं ने मिक्की माउस देखा, सभी ने देखा हुआ, किसने नहीं देखा है मिक्की माउस, देखा देखा मिक्की माउस। मिक्की माउस बहुत पहले आता था एक, उसमें बिल्ली और चूहा अधिकतर बो होते थे। तो बाबा ने कहा मिक्की माउस का खेल है, उसमें कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, चूहा भी आएगा, शेर भी आएगा, वो सब चीजें, लेकिन हमें उनको देख के प्रभावित न होना है, उसको साक्षी होके देखते रहना है। तो ये जिंदगी भी एक खेल की तरह है, खेल में क्या होता है, खुशी होती है, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन अगर हम साक्षियों के देखें तो उस खेल का मजा आएगा। तो ये साक्षियों के खेल को देखना है। और क्या कहा बाबा ने आज, थोड़ा बुद्धि को छलकाओ, क्या कहा, बहुत सारी बातें अभी तक। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा दूसरा क्या है, माया। बोला नहीं बाबा ने आज, बोला माया। बाबा ने कहा माया को देख सुनकर तो बहुत हंसते हैं, तो माया तो प्यार करती है, तुम बच्चे माया से प्यार नहीं करते हो, बाबा तुम माया तुमसे प्यार करती है। तो माया भी बातों को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। और क्या कहा, हाँ जी हाँ, बंदर का खेल है वो। और तो ये खेल है, तो खेल खेल में अपने जीवन को हल्का रखना है, उमंग उत्साह में रखना है। और फिर बाबा ने विदेशियों से मुलाकात की, क्या विदेशियों को क्या कहा, हाँ विदेशी अकेले रहना पसंद करते हैं, अगर किसी को साथ रखे तो बंधन महसूस होता है उनको, लेकिन बाबा ने कहा बाप को साथ रहेंगे रखेंगे तो स्वतंत्र अनुभव करेंगे, सारे बंधन खलास हो जाएंगे, है ना। वैसे ही बाबा ने कई मूल्य में कहा कि अगर स्वयं को ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में बांध लो तो बाकी सारे बंधन खलास हो जाएंगे। तो इस बंधन में बांधना ही स्वयं को उत्सव में रखना है, उत्साह में रखना है, उमंग में रखना है। तो बाबा ने कहा उत्साह में रहना है, उत्साह दिलाना है और उत्सव मनाना है। और तीन तीन बातें बहुत थी मुरली में, और तीन बातें कौन सी थी? मनसा वाचा कर्मणा, क्या करना है? हाँ, जो बच्चे मनसा वाचा कर्मणा निरंतर सेवादारी हैं वो क्या है? हाँ, उनके हर श्वास में सेवा समाई है। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई ना कोई सेवा चलती रहे। स्थूल सेवा का भी बहुत महत्व है, सूक्ष्म सेवा का भी है जी। हाँ, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता स्थूल सेवा में। जो सूक्ष्म सेवा है उनमें तो फिर भी दिमाग, बाबा ने कहा प्लान बनाने में तो बुद्धि चलानी पड़ती है, बाकी स्थूल सेवा में इतना सोचना नहीं पड़ता है ना। माता जी ऐसे करते होंगे, सोचना तो ज्यादा पड़ता ही नहीं, सोचने के लिए बाबा को छोड़ दिया, गीत बताया ना, है ना। सोचने का भी काम भगवान कर देता है, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए, है ना। कितना हमारे ऊपर उसको नाज है, प्यार है, मोहब्बत है, उसके प्रदानों की बरसात होती रहती है। तो बाबा की क्या कहने और उसके बच्चों के भी क्या कहने, है ना। और क्या कहा बाबा ने? कोई भी कमी कमजोरी है तो क्या करो, बाप के आगे अर्पण कर दो। और क्या कहा? एक और बात है, बड़ी अहम बात है, वो सच्चाई। बाबा ने कहा जो सच्चाई में रहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी रहता है, है ना। बाप के साथ सच्चाई से रहना है। तो इस ब्राह्मण लाइफ में कभी भी उदासी नहीं आनी चाहिए, और उदासी से मुक्त होने का साधन, एकमात्र साधन है भगवान के महावाक्यों की निरंतर गूंज हमारे कानों में पड़ती रहनी चाहिए। चाहे उसका चिंतन करें, चाहे आपस में ज्ञान चर्चा करें, चाहे उसको पढ़ें, चाहे किसी को सुनाते रहें, है ना, अलग अलग पॉइंट उसको निकाल के श्रृंगारते रहें, और निरंतर धीरे धीरे जो ये आदत है, ये आदत हमको बहुत सारी परेशानियों से मुक्त कर देगी, हमेशा हमें खुश रखेगी, क्योंकि हम भगवान की श्रीमत का पालन करने के लिए किसी न किसी तरीके से लगे हुए हैं। नहीं तो जैसे हम थोड़ा सा चूक हो जाती है तो कई प्रकार की हमारे अंदर माया की प्रवेशता होने लग पड़ती है, और फिर उससे छूटना मुश्किल होता है, क्योंकि आदत पड़ी है ना पहले से ही। तो इस मुरली में बहुत सारी बातें थी। तो विश्वेश्वर बाप ने देखा, किसको देखा? जो सृष्टि की आदि रचना है, ब्राह्मण आत्माओं को देखा, जो समीप रतन है ना, जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्राह्मण जीवन में अवतरित हुई हैं, ऐसी अवतरित आत्माएं जो भगवान के अवतरण के साथ जन्मदिन मनाती हैं। स्वयं बच्चे बाप का जन्मदिन मनाते हैं, और बाप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, और बाप क्या क्या देखकर हर्षित होते हैं कि ये मेरे बच्चे स्नेही आत्माएं हैं, सहयोगी आत्माएं हैं, हिम्मत से इस कार्य में मददगार बने हुए हैं। ऐसी आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। तो बाप मारा हर्षित हो और बच्चा उसका मूर्छित हो तो अच्छा लगेगा? तो कितनी बड़ी बात है, भगवान हमको देख के हर्षित होता है। तो बुद्धि में बात रहेगी तो हर्षित रहेंगे हम, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ, वो चीज फिर अपनी नहीं रहती, अर्पण कर दी तो कर दी, वो चीज अपनी नहीं रही, उसको दे दी तो दे दी, लेकिन फिर हम तो ऐसे है ना, ले लेते हैं ना वापस, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि लेने की आदत बहुत पड़ी है ना। तो लेना है तो बाप से लेना है ना, उसको जो दे दिया वो दे दिया, बात खत्म है। बहुत अच्छी बात है। फिर बाबा ने कहा खुशी में खुशी, तो वो भी देखना है, कितनी सारी बातें खुशी में खुशी। तीसरी बात थी कौन सी थी? बिंदु का महत्व बताया, बिंदु का महत्व, वो वक्ता आत्मा है और ये ब्राह्मण बच्चे। बिंदु जितना सूक्ष्म है उतना शक्तिशाली है, और शक्तिशाली है इसलिए वो गुणों का सिंधु है, शक्तियों का सिंधु है, ज्ञान का सिंधु है, पवित्रता का सिंधु है, ऐसे कई प्रकार के सिंधु बना सकते हैं। तो उस मुरली को एक योग का प्रयोग बना देना है। जब भी हम सवेरे या शाम मुरली में मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो योग के रूप में उसको अनुभव करना है कि वो शक्तियों का सिंधु मेरे ऊपर बरस रहा है, वो गुणों का सिंधु मेरे ऊपर बरस रहा है, वो पवित्रता का सिंधु मेरे ऊपर बरस रहा है, वो ज्ञान का सिंधु मेरे ऊपर बरस रहा है। तो मुरली भी याद हो जाएगी और योग में नवीनता भी आ जाएगी, डेली नया नया योग हो जाएगा। नहीं तो एक प्रकार का योग करते रहेंगे, मन भारी हो जाता है फिर, इसलिए योग में नवीनता चाहिए, क्योंकि मन को नई चीजें चाहिए, पुरानी पुरानी चीजों पर मन मानता नहीं है। तो डेली नया नया योग का प्रयोग कर सकते हैं हम, है ना। तो ये थी बात। नेक्स्ट थी विशेषताओं का झंडा। तो सबकी विशेषताएं देखनी है, जैसे बाबा सबकी विशेषताओं का झंडा लहराते, बाबा ने कहा कितना सुंदर दृश्य होगा, है ना। संसार में तो झंडा लहराते हैं, फूलों की वर्षा होती है, लेकिन भगवान हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा करते हैं। तो कितना सुंदर प्रयोग है अभी योग के लिए, कि भगवान के वरदानों की बरसात हो रही है। अब हम एक घंटा योग में बैठे हैं, तो मान लो एक घंटा भगवान अभी हमारे ऊपर वरदान बरसाएगा, बाढ़ आ जाएगी, कितना सुंदर चिंतन चलेगा वो, कि वो हमें वरदान दे रहा है, हमारे सिर पर उसने हाथ रखा हुआ है और सारी वरदानों की शक्तियां अंदर समाती जा रही हैं। अमर बाबा, अविनाशी बाबा, अचल अडोल बाबा, ऐसे दूसरे अनेक प्रकार के वरदान हैं जो पहले से लिस्ट तैयार चाहिए, है ना। विश्व कल्याणकारी आत्मा भव, नैनों के नूर भव, सिर के ताज भव, ऐसे अनेक प्रकार के वरदान है। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, ज्ञान की गंगा भव, मास्टर बीजरू भव, लाइट हाउस माइट हाउस भव, अव्यक्त आकारी फरिश्ता भव, सूक्ष्म वतनवासी भव, मूल वतनवासी भव, मर्जीवा भव, ऐसे अनेक प्रकार के वरदान है। तो पहले से उसकी लिस्ट तैयार करके रखनी है, ताकि वो तीन की बजाय 30 वरदान कम से कम उसकी बरसात अनुभव तो कर ले हम जीवन में। नवीनता लानी है जीवन में, तो उत्सव होगा इस जीवन का, नहीं तो उमंग उत्साह में कमी आती जाएगी। और नवीनता स्वयं ही क्रिएट करनी है, क्योंकि जो स्वयं हम पैदा करते हैं तो उसकी खुशी अपनी होती है, जो दूसरे का सुनते हैं उसकी इतनी खुशी नहीं होगी, स्वयं क्रिएट करना है। और फिर बाबा ने क्या कहा, विशेषताओं का झंडा हो गया, खुशी में खुशी भी हो गई, और विश्वेश्वर बाप का मिलन भी हो गया बच्चों से, बिंदु का महत्व भी हो गया, और अन्न भोजन की, तो ज्ञान का भोजन भी हमको स्वयं तैयार करना है। वो वाला भोजन तो है, और हमने देखा जितना ज्ञान का चिंतन करेंगे दूसरी भूख कम होती जाती है, नहीं तो हमारा फोकस अगर ज्ञान का चिंतन हमने कम किया ना, तो सारा फोकस उस भोजन पर ही रहता है, और वो भोजन फिर ज्यादा खाया जाता है, और वो फिर बदहजमी करता है, फिर बीमारियां बढ़ती हैं। सही बात है, जिस दिन ज्ञान का चिंतन अच्छी तरह से कर लिया, भूख बहुत कम हो जाती है, नहीं तो बुद्धि अगर ज्ञान का चिंतन नहीं किया ना, तो बुद्धि वही उसी वही प्लान बनाती रहेगी, और वो अक्सर भी खा जाएगा जब स्वादिष्ट भोजन होगा, तो बोलेंगे बार बार थोड़ा नहीं मिलता है, ऐसे बोलेंगे, और वो भोजन फिर भले ब्रह्मा भोजन है, लेकिन वो भोजन फिर भारी पड़ जाता है। तो ज्ञान का चिंतन जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, अनेक ऐसे थोड़ा ना, वो बाबा ने कहा कि ये भोजन दुख दूर करता है, क्योंकि वो दुख दूर करता है, अर्थात हम एक्स्ट्रा भोजन खाते तो दुख होता है, हम जितनी आवश्यकता उतना खाएंगे तो दुख नहीं होगा, उससे बीमारी पैदा होगी नहीं, कहीं ना कहीं भोजन में इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो ज्ञान के चिंतन में अगर कमी है, तो हमारी सारी चेतना जो है, हमारी सारे जो चिंतन है ना, दूसरे भोजन की तरफ ही चलता है, तो चिंतन को बढ़ाना है। वैसे भी आपने देखा, हम सब महसूस करते होंगे, दादियां बड़े भाई वो ज्यादा भोजन नहीं करते, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, क्योंकि ज्ञान का चिंतन बहुत है। बड़ी बहनें जो ज्यादा चिंतन करती हैं, वो भोजन के प्रति कम है उनका, इसलिए ज्ञान के भोजन को बढ़ाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा शुद्ध धन संसार में किसी को प्राप्त नहीं होता है, तो हमने वास्तव में उस स्थूल भोजन को समझ लिया है तो उसके बारे में, लेकिन उसका सूक्ष्म इशारा ज्ञान के भोजन के भी प्रति है। तो ज्ञान के भोजन को बढ़ाना है, ताकि हम अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त रह सकें। और क्या कहा बाबा ने, माया तो आएगी, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है, नहीं तो सांप की तरह कट जाएंगे। कोई कुछ बोलेगा, बोलना तो बोलता रहे वो, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखें, छोड़ दें उसको, उसकी बात उसके पास ही रहेगी, हम क्यों प्रभावित हो जाएं। भगवान हमको यहाँ हंसाने के लिए आया, खुश करने के लिए आया है, और हम किसी की बात को देखकर ही दुखी हो जाएं, तो फिर उससे तो भगवान से तो बड़ा वो वाला हो गया जिससे हम प्रभावित हो गए, हमने उसको महत्व दे दिया, तो भगवान को हमने महत्व ही नहीं दिया, तो ये भी तो उसकी इंसल्ट होगी ना एक हिसाब से। तो जिस तरीके से बाबा हमको देखता है, उसी दृष्टिकोण से, उसी एटीट्यूड से हम अपने सोमान के आसन पर स्थित रहें, उस सीट पर सेट रहें। उसने हमको रोज सवेरे इतने ऊंचे ऊंचे सोमान देकर ऊंचा बिठा देता है, और किसी ने कुछ कहा तो सारा खींच के नीचे आ जाते हैं। तो भगवान की बात की हमने अहमियत दी नहीं है, उसको तवज्जो दी नहीं है, महत्व दिया नहीं, तो उसको महत्व देना है, ताकि उसकी सीट पर सेट रहेंगे, दिलाराम के दिल में हमेशा बैठे रहना है। तो ये एक ही थी बात। तो माया आएगी लेकिन पकड़ना नहीं है, साइड से नहीं आएगा लेकिन साक्षियों के, और बाप को साथी बन के रखना है। वो साथ रहेगा तो अनेक प्रकार की समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसकी छत्रछाया के नीचे चल रहे हैं, सुप्रीम रू की छत्रछाया है, उसकी छत्रछाया के नीचे रहेंगे तो निरंतर सेफ रहेंगे। तो ये थी। और नेक्स्ट था वरदान, विदेशियों से मुलाकात। तो विदेशियों से मुलाकात कौन सी थी? स्वतंत्रता। तो बाप के साथ रहेंगे तो बंधन सारे खलास हो जाएंगे, इस बंधन में स्वतंत्रता समाई हुई है। और नेक्स्ट मास्टरदाता कौन है? मास्टरदाता वह हैं जो क्या करते हैं, जो रूहानी रूहों को भी बाप समान बनाने की सेवा करते हैं, और क्या करते हैं, वर्षे के अधिकारी बनाते हैं, और क्या करते हैं, दुख अशांति से मुक्त करते हैं, और उनको सुख शांति से मालामाल करते हैं, और मनसा वाचा कर्मणा निरंतर सेवादारी कौन है, जो सेवा में लगे रहते हैं, जिनकी श्वास में सेवा समाई हुई है। ओम शांति।